ഹാരണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയിര്യാണം നമോ വജ്രായാണം നമോ ലോയി സവസാഹൂണം ഏഷു പഞ്ച നമോ യാരോ സൗവ പാവപണാസനോ മംഗളാണം ച സവേശിം പഠമം ഹവയി മംഗളം പഠമം ഹവയി മംഗളം. പഞ്ചപരമേശ്വരി ഭഗവാൻ കീ അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മ കീ ആചാര്യ ഗുരുവർ ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ മുനി മഹാരാജ് കീ चौथा पाठ आज प्रारंभ करेंगे. अभिवादन. पहला प्रश्न है, पंच परमिष्टि दूसरे नंबर में गुणहीन मुनि, गुणहीन का तात्पर्य ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है? भावलिंग रहित द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंग व द्रव्यलिंग दोनों से रहित मुनि. तीसरे नंबर में आरिका, चौथे नंबर में आइलक, फिर छुल्लक, प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक, प्रतिमा रहित सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक तो रहित गृहस्थ, अन्यमति गृहस्थ, इनको अभिवादन रूप सत्कार में क्या कहना चाहिए? अभिवादन का तात्पर्य जो हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, तो अपने मुख से कुछ शब्द का प्रयोग भी करते हैं. जैसे गृहस्थ गृहस्थ के लिए जय जिनेन्द्र बोलते हैं, मुनि मुनि के लिए नमोस्तु बोलते हैं, मुनि पंच परमेष्टियों के लिए नमोस्तु कहते हैं, भगवान के लिए भी नमोस्तु कहते हैं, मुनियों के लिए श्रावक क्या बोलते हैं? नमोस्तु बोलते हैं. श्रावक के लिए मुनि क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते, न देखते न आशीर्वाद देते, मौन रहते. इसलिए तो उपसर्ग हुआ था. कल के दिन कथा सुनी थी, मुनि महाराज गृहस्थ के लिए अगर वो ध्यान में है तो कुछ भी नहीं कहेंगे, ध्यान में अगर हैं वो तो कुछ भी कहते नहीं, अगर ऐसे बैठे हैं फुर्सत में बैठे हैं, स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हैं, मन उनका अपने क्रियाओं में नहीं है, स्वाभाविक रूप से बैठे हों तो आशीर्वाद भी कहते हैं, हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। धर्म लाभोस्तु, यह आशीर्वाद करते हैं। क्या बोलते हैं? नमस्कार करने वाले को धर्म लाभ अस्तु, यानी आपके लिए धर्म का लाभ हो, आपने पंच परमिष्टियों से, में से साधु परमिष्टि का दर्शन किया, उपाध्याय परमिष्टि का दर्शन किया, आचार्य परमिष्टि का दर्शन किया, आपको धर्म लाभ हो, आपकी भावना साकार हो, आप धर्मात्मा की वंदना कर रहे हैं, तो अवश्य लिखेंगे नहीं, वो तो लिखा हुआ सब जगह है पाठ में। मुनि महाराज, कोई श्रावक दर्शन कर रहा है, ध्यान से सुनना है, मुनि महाराज क्या कहते हैं श्रावक के लिए? धर्म लाभोस्तु, इसका अर्थ क्या है? आपको धर्म का लाभ हो, क्योंकि आप एक धर्मात्मा का वंदन कर रहे हैं, धर्मात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, नमोस्तु बोल रहे हैं, तो उसके प्रतिफल रूप आपको धर्म लाभ हो। धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म कहलाता है। इस वंदना से आपको सम्यक दर्शन का लाभ हो, आपको सम्यक ज्ञान का लाभ हो, आपको सम्यक चारित्र का लाभ हो, इस प्रकार मुनि महाराज जो उनको आशीर्वाद देते हैं, धर्म का आशीर्वाद देते हैं, धर्म मिले आपको, आपका आत्म कल्याण हो, ये सद्भावना न भाते। और यदि वे लिख रहे हों तो कुछ नहीं कहेंगे, पढ़ रहे हों कुछ नहीं कहेंगे, किंतु नमस्कार करने वाला नमस्कार करके चला गया तो उसको नमस्कार करने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आशीर्वाद नहीं दिया तो कैसे मिलेगा? मिलेगा। कोई कोई कहते हुए चले जाएंगे कि हमने नमस्कार तो किया लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला, नमस्कार करना मेरा व्यर्थ रह गया, ऐसा समझा जा सकेगा क्या? नमोस्तु करते ही आपको तत्काल उसी समय फल मिलता है, उस समय में भी मिलता है, और जब नमस्कार के भाव आ गए उस समय से ही फल मिलना प्रारंभ हो गया। जैन धर्म क्रियाकांड प्रधान नहीं है। क्या प्रधान है? भाव प्रधान है। आप नमस्कार कर रहे हैं तो भी फल मिल रहा है, नमस्कार के भाव आ गए तो भी फल मिल रहा है, फल दोनों तरफ से मिलता है, भाव से भी मिलता है और करने पर भी मिलता है। तुम्हारा यदि ऐसा ही जैन धर्म का सिद्धांत है तो हमारा एक प्रश्न है, ये बताओ क्या प्रश्न है? तो हम तो श्रावक हैं और हम महाराज को दान देते हैं आहार दान, भावना भाने से भी फल मिलता है, तो केवल हम भावना ही भाएंगे, आहार नहीं देंगे? महाराज भले ही घूमते रहे, भावना से मिलता है ये सिद्धांत है तो इसी सिद्धांत को इधर लगाया जाए तो इसमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिद्धांत सब जगह लागू नहीं होता, एक जगह होता है और एक जगह नहीं होता है, जहां होता है वहीं होता है, जहां नहीं होता वहां नहीं हो सकता। महाराज घूम करके चले आए, एक जन भी पड़ गए नहीं, महाराज आकर के उपवास बैठ गए, महाराज से आकर के कुछ श्रावकों ने कहा, महाराज आहार निरंतराय हो गया। तो महाराज कहते हैं, हाँ हमारा तो निरंतराय हमेशा ही होता है, निरंतराय हमारा हमेशा ही होता है। जो आहार हमारा है वो हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, असली आहार तो हमको निरंतर मिलता रहता है, वो तो निरंतर अंतराय के बिना निरंतर मिलता रहता है। ज्ञानामृतम भोजनम, उसमें कभी भी हमें विघ्न नहीं आया। ज्ञानामृत को तो हम सदा ही पीते रहते हैं, वही हमारा असली आहार है। आज जरूर है कि शरीर के लिए आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला महाराज, इस नगर में बहुत ज्ञानी लोग हैं, क्या हो गया, अंतराय कैसे आ गया, हमको भी पता नहीं। तो उसने किसी से पूछा, क्यों महाराज का आहार क्यों नहीं हुआ आज? तो उन्होंने कहा, जैन धर्म भाव प्रधान है, महाराज ने ही कहा था। महाराज ने ही कहा था इसलिए उनका आहार नहीं हुआ, हम क्या करें। जैन धर्म भाव प्रधान है, जैन धर्म भाव प्रधान है। आहार देने के भाव रखने मात्र से फल नहीं मिलता, आहार तो देना पड़ता है, स्वयं के अपने हाथों से देंगे तो ही लाभ मिलता है। मान के चले चौका भी लगाया है और घर के लोगों ने नहीं दिया और बाहर के लोगों को आगे कर दिया, अपने हाथ से उन्होंने नहीं दिया, क्या फल मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलने वाला। देने के भाव हैं, आहार भी तैयार किया लेकिन दिया नहीं, देने वाला दूसरा और लेने वाले ले रहे हैं। और मान लो उनको मालूम नहीं है कि घर के कौन और बाहर के कौन, उन्होंने लेने वालों ने ले लिया और देने वालों ने दे दिया और घर वाले दूर खड़े रहे। क्यों खड़े रहे दूर? क्योंकि जरा डर लगता है महाराज से, देने में डर लगता है, हाथ कपते हैं, वो होता है ये होता, निमित्त बना करके। घर वाले तो दूर खड़े रहे और बाहर वालों ने आहार कराया, तो उस वक्त घर वालों को चौका करने के उपरांत भी पुण्य लगेगा कि नहीं? नहीं लगने वाला है। पुण्य तो लगता है, धर्म संबंधी दान संबंधी तीर्थंकरों ने ये चर्चा की है, पुण्य तो तब लगता है जब हम नवदा भक्ति करेंगे। नवदा भक्ति के बिना पुण्य नहीं लगता, और नवदा भक्ति दूसरे से नहीं करवाई जाती, नवदा भक्ति अपनी तरफ से अपने को ही करना पड़ता है, पड़गाना अपनी तरफ से, अंदर विनय पूर्वक ले जाना अपनी तरफ से। लोगों को एक आदत है, पड़गा लेते हैं वहां तक ले जाते हैं, घर वाले तो पीछे जो डरते रहते हैं ना वो पीछे रहते हैं, महाराज चलो आप, महाराज चलो आप, तो तुम्हारा घर किधर है हमको क्या मालूम, इधर मुड़ना कि इधर मुड़ना कि सीधा जाना, दूसरे के घर में हम घुस गए तो फिर वापस आना पड़ेगा। पड़गाने के बाद घर वाले आगे आगे चलते हैं, स्त्री और पुरुषों को जो घर वाले हैं उनको इर्यापद शुद्धि पूर्वक सावधानी से जीव न मरे इस प्रकार जल्दी जल्दी जाके पैर धोना चाहिए, फिर महाराज को बुलाना चाहिए अंदर, खुद को आगे होना चाहिए, महाराज को पीछे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे रास्ते में चलते महाराज आगे चले और हम पीछे। चौका में विनय ये नहीं होता कि साधु को आगे करे और खुद पीछे रहे, ये विनय नहीं है। विनय यही है विनय पूर्वक बुलाते हुए स्वयं को आगे चलना, रास्ता बताना और साधु को पीछे रखना, ऐसे ले जाया जाता है। प्राय करके ये होता है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं होने से भी ऐसा हो सकता है। महिलाएं तो आगे हो जाती हैं, पुरुष आगे नहीं होता, ये रोज होता है। हम सोचते हैं कि पुरुष ऐसा क्यों करता है, कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष ही डरता है, क्या है? आगे तो पुरुष को चलना चाहिए। चौका में महाराज आए हैं क्या, आरिका आई है, महाराज आए हैं तो महाराज को तो पुरुष आगे आगे होकर लेके चलना चाहिए। आरिका हो तो स्त्रियों को ले जाना चाहिए, पुरुष पीछे हो जाए तो चल भी जाए। परंतु महाराज अगर आए हैं तो पुरुष को तो आगे लेके चलना चाहिए, महाराज आइए पधारिए कहते हुए आगे चलना चाहिए। वहां जाकर के उनको उच्चासन देना चाहिए। पाटा हिलता है क्या नहीं हिलता, गुड़गुड़ हिलता है, कहीं से चींटी आ गई वो पाटे के नीचे आकर के बैठी थी या जा रही थी, ऐसे पैर रख दिया तो चींटी मर सकती है। महाराज उस पाटा को उठवाते ही, कहीं आकर के बैठी हो तो उसको पिंची से साफ करते हटा देते हैं, साफ नहीं करते हटा देते हैं, पिंची से हटा करके उसको फिर पाटा रखवा लेते हैं। और फिर भी वो हिलता रहता है, हिलते समय में भी जीव आकर के मर सकता है। आप लोगों के चौके में तो चींटियां बहुत होती है, क्योंकि शक्कर ज्यादा मिलता है ना, उस चक्कर में आ जाती है चींटियां। तो उन चींटियों को वो बचाएंगे कैसे? ऐसे ही खड़े हो गए और पाटा हिल रहा है तो चींटी आकर के कभी दब सकती है बीच में, इसलिए उसको लगाना पड़ता है। कुछ भी लकड़ी का चूरा या चम्मच या कुछ भी लगाते हैं आप लोग, वो इसलिए लगाया जाता है कि जीव आकर के न मरे, इस उद्देश्य से लगाते। तो वो महाराज को बिठाना चाहिए, विराजमान हो जाइए उच्चासन पर, ये भी एक नौदा भक्ति है। पड़गाया ये भी एक नौदा भक्ति, खुद आगे होकर के उनको ले जाना ये भी नौदा भक्ति। जब पैर धोया जाता है उस समय महाराज को तो महाराज चलिए पैर धोइए, महाराज चलिए यही कहते हुए खड़े रह जाते हैं। उनको डर रहता है कि महाराज प्रवेश किए बिना हम कैसे प्रवेश करेंगे, और हमने पैर धो लिया तो महाराज ने नहीं धोया तो लौट जाएंगे, हम अंदर जाएंगे महाराज निकल जाएंगे तो क्या होगा, ये डर भी रहता होगा। ऐसा नहीं होता। महाराज इसलिए खड़े हैं कि आप जल्दी प्रवेश पहले करेंगे, इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप रास्ता बताएंगे इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको आगे होना चाहिए जल्दी। और पैर धोते समय क्या होता है, नंबर लगा लेते हैं, एक ग्लास रहता है और थोड़ा सा पानी रखे रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद मतलब पांच मिनट प्रतीक्षा करें महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर पड़गाते समय जो कलश रहते हैं आपके, कलश तो रहते ही हैं सबके हाथ में हो या न हो, वहां पर ये रख जल्दी से कलश वहां रख देना चाहिए और एक ग्लास में से जल्दी जल्दी सबको धो देना चाहिए। पानी फुल भरा रहता है उसमें, तो एक दो तीन ग्लास रखेंगे तो अंदर ले जाने के लिए कम से कम दो तीन लोग जल्दी तैयार हो सकते हैं। एक के बाद एक नंबर लगाते हैं, ठीक नहीं, उसी ग्लास से ये धोएंगे फिर उसी ग्लास से वो धोएंगे, वैसा ठीक नहीं। दो तीन ग्लास ही रख दो, सब लोगों ने ले लिया, ایک ساتھ دھو لیا جلدی ہو جاتا ہے کام. مہاراج کو کھڑے کروانا ٹھیک نہیں ہے, پرتیکشا کروانا ٹھیک نہیں ہے. مہاراج کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ہوگا کہ دو منٹ بعد ہوگا, ان کا راستہ کدھر, ان کا گھر کدھر, یہی دیکھتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ بہت آگے گھر سے, گھر کو تو چھوڑ دیتے ہیں, گھر کا آنگن بہت آگے آ کر کے پڑگاتے ہیں, وہ دوسرے کا گھر رہتا ہے. تو اپن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا گھر یہی ہوگا تو کنفیوژن ہو جاتا ہے. پڑگانا جو ہے وہ اپنے ہی گھر کے سامنے سے ہونا چاہیے, آنگن میں آ کر کے ہونا چاہیے. دوسرے کے گھر کے سامنے کھڑے رہیں گے تو پتا نہیں لگے گا آپ کا, دوسرے کا گھر یہاں ہے اور آپ کا گھر وہاں ہے, یہاں پڑگا رہے ہیں تو مہاراج تو یہی سمجھیں گے کہ یہیں کہیں گھر ہے ان کا. تو اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے, کون کس کا چوکا کتنا دور ہے, کہاں ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو سب سے اچھا یہ ہے, کراچی تو ہو جانا بات الگ ہے. پہلے دن ہوا, نئے نئے تھے سبھی لوگ, مہاراج کو بھی پتا چلے, اس لیے آپ کسی ایک دن کارن وش اپنے گھر کے آنگن کو چھوڑ کر کے بہت آگے آ کر کے پڑگایا, وہ بات الگ ہے. کداچت ہو جانا بات الگ ہے, کارن وش ہو جانا بات, لیکن روز روز کی بات ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے اپنے گھر کے سامنے ہی کھڑے ہو کر کے پڑگایا جاتا ہے, وہی ودھی ٹھیک مانی جاتی ہے. اب پڑگاتے سمے جو پیر دھویا جاتا ہے وشیش کر کے دھیان میں رکھیں گے, وہاں پر دو تین گلاس رکھنا چاہیے. پانی بھلے ہی ایک پاتر میں رکھے ہوں, گلاس کتنی ہونی چاہیے, دو تین. دو تین لوگ ایک ساتھ دھوئیں گے یا گلاس ہی بھر کر کے رکھ دو, ایک ایک کو ایک ایک, تو ایک ساتھ دھوئیں گے تو جلدی مہاراج کو اندر لے جا سکتے, ٹائم نہیں لگنا چاہیے اس سمے. اور پڑگاتے سمے نیچے دیکھتے ہوئے پڑگایا جاتا ہے, وہاں پر چیٹیاں بھی جاتی رہتی ہیں, کوئی گندا کپڑا بھی گرا ہوا رہتا ہے, گندی وستو بھی گری رہتی ہے, اس پر پیر نہیں پڑنا چاہیے. نیچے دیکھتے ہوئے ایریاپت سمیتی کے ساتھ پڑگانے کے لیے بتایا, جیو کے اوپر پیر نہیں پڑنا چاہیے, گندگی میں پیر نہیں رکھنا چاہیے, اور مہاراج کو اس استھان سے پڑگانا چاہیے جہاں پر آپ لوگ بھی پردکشنا دے سکتے ہیں اور ان کو بھی شدھ جگہ, جیو رہت جگہ پر کھڑے کر سکتے ہیں. جہاں پر جیو ہوتے ہیں ملینتا ہوتی ہے, اس جگہ کو پہلے سے ہی سوچھ رکھا جاتا ہے, سوچھ دیکھ کر کے کھڑے ہونا ہوتا ہے. یہ باتیں, سنکوچت جگہ ہوتی ہے کتنی ہی جگہ تو لوگ زیادہ رہتے ہیں اور جگہ پڑگانے کی چھوٹی ہوتی ہے تو وہاں پر بھیڑ لگ جاتی ہے تھوڑی. پڑگانے کی اچھا سب کو ہوتی ہے اور پڑگانا تو سبھی کو چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے چار لوگ دور کھڑے ہیں وہ دور سے ہی نمستو نمستو بول رہے ہیں, پڑگانے والے الگ سے ہیں, ایسا نہیں. جو کچھ بھی باہر گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں ان سب کو ہی پڑگانا چاہیے. جن کو آہار دینا ہے, سولے کا کپڑا پہن چکے ہیں, ان سب کو پڑگانے کے وچار تو رکھنا ہی چاہیے, پردکشنا ہوتی ہی ان سے. پورے نودا بھکتی کریں گے تو آپ کو پورا پنیہ ملتا ہے, ادھورا نودا بھکتی کریں گے تو ادھورا ہو جائے گا. تو نودا بھکتی گھر والوں سے تو نیم سے ہونا چاہیے, اور گھر کے باہر سے جو پڑگانے ہی تو سہیوگ کرنے ہی تو آپ کے یہاں آتے ہیں, اس سہیوگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور دینے کے لیے بھی, دینے کے بھاؤ ہیں تو دینے کے لیے بھی آئے ہیں, پرنتو آپ کے چوکے کے وستو کو وہ دیں گے, دینے کے بھاؤ ہیں, بھاونا پوروک دیں گے, لیکن وہ اپنی وستو نہیں ہے. تو وستو سمبندھت پنیہ تو ان کو لگتا نہیں ہے, وہ اس چوکے کی وستو ہے. سویم کی وستو ہوتی تو سویم کا پنیہ لگتا, तो अपने चौके से लाए हुए वस्तु को दे सकता है तो पुण्य है। वहीं का दे रहा हो दाता तो वस्तु संबंधी पुण्य उसको लगेगा नहीं, सहयोग संबंधी पुण्य लगेगा। सहयोग संबंधी पुण्य अवश्य लगेगा। और बाहर से आकर के जो देते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, बाहर के वस्तु क्या लाना और क्या लाना। प्राय करके सबको मालूम है, फिर भी वहां पर अन्न पदार्थ लाए नहीं जाते, जैसे रोटी भात दाल पानी ऐसी चीजें जो पकाए जाते हैं उनको लाया नहीं जाता। जो सूखी चीजें हैं उनको ला सकती है, क्योंकि एक चौके से दूसरे चौके में अन्न पदार्थ को ले जाते समय उनका वातावरण और उनका माहौल बदलने से उनमें समूर्छन जीवों की उत्पत्ति की संभावना रहती है। उस हिंसा से बचने हेतु अन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना या ले जाना ये निषेध किया है। जैसे चौके में भी, चौके में जिस पदार्थ को हम तैयार करते हैं जिस जगह वह तैयार होता है उसी स्थान पर महाराज को आहार दिया जाता है, पात्र को आहार दिया जाता है। अंदर के चौके के सामान को ला करके जमाया बाहर और वहां आहार करवाया तो ऐसा नहीं होता। वहां जमा करके रखेंगे तो सारा यहाँ का माहौल अलग था, वहां का माहौल अलग था, यहाँ वहां का गर्म था, यहाँ का ठंडा हो गया, और शीत उष्ण मिल करके समूर्छन जीवों की उत्पत्ति आहार पदार्थों में होती है, इसलिए उसका निषेध किया है। अंदर के पदार्थों को बाहर नहीं जमाना चाहिए। ये हो सकता है अंदर के पदार्थों को थाली जमा करके जहाँ प्रकाश है महाराज को वहीं पाटा लगा लिया, हाथ में उठा करके उन पदार्थों को देते समय ही वहां ले जा करके दे दिया, तो ये हो सकता है। लेकिन चौके के सामान को ही ले जा करके जमा करके नहीं दिया जा सकता। यदि वहां देना है वहीं प्रकाश है तो आहार निर्माण भी उसी जगह किया जाता है, तो ये निर्दोष है। ये आहार संबंधित जो बातें हैं इनको विवेक से किया जाता है। जैन धर्म में अहिंसा बहुत प्रमुख सिद्धांत है। उस अहिंसा की रक्षा को श्रावक और पात्र सदा सतत करते रहते हैं। जब ले जाते हैं तो चौके के भीतर किसी किसी घर में प्रकाश नहीं होता, रास्ते में, वहां तो होता है अंदर जहां देते हैं वहां पर, वहां पर अंदर प्रकाश है और रास्ते में प्रकाश यदि नहीं होता है तो क्या करते हैं, लाइट लगाते हैं। अभी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लाइट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो लगाया हुआ हो तो बुझा देते हैं, या तो बुझा देते हैं या लगा देते हैं, बहुत गड़बड़ चलता है। रास्ते में लाइट हो सकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रास्ते में तो होना चाहिए। रसोई घर में जहां खाना पकाते हैं वहां अंधेरा हो तो अंधेरे को लाइट से दूर करके वहां खाना पकाना चाहिए कि नहीं पकाना चाहिए, ये मालूम नहीं है, है? हाँ? रसोई घर में लाइट जला करके खाना पकाना चाहिए कि नहीं पकाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए, मालूम है ना? क्यों नहीं पकाना चाहिए? ये लाइट के सूक्ष्म जीवाणु डायरेक्ट जहां पकाया जा रहा है उन्हीं में वो गिर सकते हैं। रात भर आकर्षित होते हैं लाइट के आसपास में बैठे रहते हैं वो, और वो कीटाणु आकर के आहार में गिर सकते हैं, और आहार में गिर जाए तो आहार दूषित हो जाएगा, तो अंतराय आ सकता है। उसमें कोई कीटाणु गिर गया और आहार देते ही उसमें आ गया तो अंतराय हो सकता है। अब रास्ते में ऐसा है, कि आप रास्ते पर भी रात भर लाइट जला के रख सकते हैं, रखे रहते हैं कहीं कहीं घर में प्रकाश के लिए, वहां पर भी कीटाणु आकर के बैठे रह सकते हैं, और दिन में जब महाराज आए तो उस समय प्रकाश के लिए आप लोगों ने जलाया, वैसे महाराज के लिए ही नहीं जलाया जाता है, खुद को भी हमेशा 24 घंटा रोज ही खुद को भी आने जाने के लिए जीवाणु दिखना चाहिए कि नहीं, कि अंधेरा में ऐसे जाना आना रहना चाहिए। यदि आप लाइट नहीं लगाते हैं तो दया नहीं आपके पास, अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। जीवाणु दिखना चाहिए, चीटी है और कोई जीवाणु आ सकता है, आंखों से दिखना चाहिए, और दिख रहा है तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, और बहुत चीटियां हो गई तो उसको इकट्ठे करके किसी एक जगह सुरक्षित छोड़ना चाहिए। घर में ऐसा कई बार होता है, चीटी बहुत हो जाती है कि नहीं हो जाती, तो क्या करते आप लोग, वहीं खिसका करके छोड़ देते हैं, फिर वो दो मिनट में इधर आ जाते हैं, तो खिसकाया था वो तो उधर चले गए होंगे, फिर देखने की क्या जरूरत, ऊपर देखते हुए चलते हैं तो दो मिनट में वहां आई हुई होती है। जीव यदि घर में हो जाते हैं तो उनको या तो दीवाल से चार अंगुल छोड़कर वो खींचना चाहिए लाइन, इसकी मोटी लाइन हल्दी की, हल्दी छोड़ेंगे तो कुछ समय के लिए वो उसको लांग कर दीवाल से इधर नहीं आ सकती, दीवाल के पास से लगाओगे तो फिर वो इधर ही आ जाएंगे सभी। दीवाल को छोड़कर उनकी जो लाइन है दीवाल के किनारे पर रहती है, हमेशा चीटियां अनुशासित ढंग से चलती हैं, इधर उधर नहीं जाती, वो जो भटकी हुई चीटी होती है वो इधर उधर आती है, लेकिन वो एक लाइन से चलती है जैसे सेना चलती है, ऊपर सबसे आगे कमांडर होता है और पीछे सेना चलती है, उनकी भी सेना है वो भी चलती है। क्यों चलती है ऐसी, हम लोगों के ऊपर कोई पैर न रखे, हम लोगों की हिंसा न हो, अपने प्राणों को बचाने के लिए वो भी एक अनुशासन बनाते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चलती है। और ऐसी अगर लाइन लग गई हो और लाइन में से भटकी हुई चीटियां कहीं कहीं इधर उधर हो रही हो, तो उससे बचाने के लिए मोटी लाइन की एक वो खींचना चाहिए, ताकि हल्दी का ध्यान में आना चाहिए। और ये चौके में सब रेडी रहते हैं तो तुरंत तो लगा भी सकते हैं, और हल्दी ना हो तब इधर उधर क्या करें क्या करें क्या करें, और फिर चीटियां ऐसे ही फैलने लग जाए तो महाराज जी उस चौके से निकल जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीटियां धीरे धीरे फैल जाएंगी तो सब लोग आहार देते समय उस पर पैर तो रखेंगी, हिंसा होगी। आहार देते समय अगर जीवों पर पैर पड़ गया, एक भी जीव मर गया, तो अंतराय माना गया है, महाराज उस दिन भोजन ही नहीं करेंगे, और ये बीच में हो जाए तो अंतराय हो जाता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से उनकी हिंसा न हो, इस दृष्टि से महाराज उस चौके को छोड़कर दूसरे चौके में निकल जाते हैं, दूसरे में चौके में निकल जाते हैं, या एक ही चौका का उनका नियम रहता है तो वो सीधा लौट करके भी आ सकते हैं। एक ही चौके का उस दिन नियम था कि एक चौके में ही आहार लेंगे, तो दूसरे चौके में नहीं जाएंगे, उनके नियम हैं, तो ऐसा भी होता है। तो जीवों के संबंध में बहुत सावधानी चौके में रखना चाहिए, बहुत लोग भीड़ लग जाती है बाद में, और फिर जहां चीटियां हैं वहीं खड़े होने लगते हैं लोग, तो ऐसा होना चाहिए, चीटियां हो जाए तो हल्दी रेडी रखना चाहिए, हल्दी हो तो चीटियां इधर आती ही नहीं, वो अनुशासित ढंग से फिर रास्ते को अगर छोड़ करके आने की चेष्टा भी करेंगी तो उसके गंध से, हल्दी के गंध से लौट जाती हैं और लाइन में लग जाती हैं वो, ऐसा होता है। और यदि कोई जीव आया है तो वहीं ऐसा ऐसा करके बाजू में करके छोड़ देती है, वो भी ठीक नहीं, उसको कपड़ा रखना चाहिए, दो तीन शुद्धि की कपड़े नेपकिन चौके में रखना चाहिए। एक कोई जीवाणु बीच में आया और उसको ऐसा ऐसा करने से फिर इधर ही आता है, आती हैं वो चीटियां बहुत हठीली होती हैं, ऐसा करो तो फिर वहां तक जाएगी इधर ही आएगी, वो बहुत हट करती चीटियां ऐसा होता है। तो उन चीटियों को, उन जीवाणुओं को क्या करना चाहिए, शुद्ध कपड़ा जो रखा रहता है उसको छूने के लिए तो कुछ भी नहीं होता, शुद्धि से पहले से सोली से रखा है तो दो तीन कपड़ा रखना चाहिए एक महाराज को पहुंचने के लिए, और एक चीटियों कोई जीवाणु आ जाए तो उसको निकालने के लिए, निकाल करके दूसरी जगह छोड़ने के लिए, उसको पकड़ करके अच्छे से पकड़ो, उसको आराम से आ जाती हो पकड़ करके बाहर छोड़ करके आना चाहिए जहां पर लोग घूमते नहीं। बाहर फेंको, कहीं से बाहर फेंक दिया, जो लोग आते हैं रास्ते पर फेंक दिया, और फिर यहां मरना क्या, वहां मर गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। चीटी को पकड़ लिया और दीवार के किनारे जहां पर लोग नहीं रहते वहां पर जाकर के पानी में नहीं पटकना, जीवों को सुरक्षित रूप से इस तरह से दया करना चाहिए। कई चौकों में ये ध्यान नहीं रखा जाता कि अतिथि आने के बाद उनको पहुंचना भी रहता है लास्ट में, तो श्रावक क्या करता, अपना दुपट्टा निकाल लेता, तो शरीर का वस्त्र निकाल करके साधु को नहीं पहुंचा जाता, शरीर पर के वस्त्रों का उपयोग पहुंचने के लिए नहीं करना चाहिए। अलग से वस्त्र, नेपकिन धोया हुआ, जब आप सोले के कपड़े डालते हैं उसके साथ ओवीक डालना चाहिए, उस वस्त्र का उपयोग किया जाता है। तो ये बातें हैं, पाठ का विषय रह गया, वहां आते हैं। ये चौके की बातें, कुछ जो त्रुटियां होती हैं उनकी चर्चा हो गई। अंदर अंधेरा हो और बाहर प्रकाश हो तो वहीं पर आप लोग खाना बना सकते हैं, वहीं पर खा सकते हैं, आप लोगों को भी वहीं खाना और अतिथि को भी वहीं आहार कराना, ऐसा कर सकते हैं जहां पर प्रकाश होता है। अब हो गई साधारण बातें, सब जानकारी मिल गई। ये प्रश्न है, पंच परमिष्टि गुणहीन मुनि आरिका अयलक क्षुल्लक प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक प्रतिमा रहित सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यक तो रहित गृहस्थ अनिमति गृहस्थ, इन सबको अभिवादन रूप सत्कार में क्या कहना चाहिए, किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये चर्चा इस पाठ के भीतर है। पहले नंबर में पंच परमिष्टि क्या कहना चाहिए, लिखा हुआ है ना, नमोस्तु कहना चाहिए, पंच परमिष्टि को नमोस्तु कहना चाहिए। दूसरे नंबर में गुणहीन मुनि, इनको क्या कहना चाहिए, गुणहीन मुनि का मतलब रत्नत्रय से हीन, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, परिग्रहधारी हैं, वो असंयमी कहलाते हैं। मुनि के दो लिंग होते हैं, लिंग यानी वेश, साधुता के जो वेश हैं वो दो हैं उनके, एक अंतरंग वेश और दूसरा बहिरंग वेश। सुन रहे ना, ऊंगना नहीं, जो मुख्य बातें हैं इस समय समझा रहे हैं, ध्यान दे करके सुनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठो, एकदम जागृत होकर के सुनना। मुनि के दो वेश होते हैं, एक अंतरंग का और एक बहिरंग का। अंतरंग वेश क्या है, बहिरंग वेश क्या है, तो बहिरंग वेश ये है, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह मालूम है ना, कौन कौन से, हाँ, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, ऐसा आया है ना तत्वार सूत्र में। तो कौन कौन से है देखो, ऐसा बोलने से समझ में नहीं आएगा। क्षेत्र यानी खेत, खेत क्या, खेत वास्तु, वास्तु किसको कहते हैं, घर को। वास्तु हिरण्य, हिरण्य किसको बोलते हैं, चांदी को। हिरण्य चांदी, खेत घर चांदी सोना दिया है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर चार्ट ही दिया है, क्यों लिख रहे हैं फालतू। ये देखो पेज नंबर 22 पर है क्या, नहीं उससे आगे एक चार्ट भी लग गया है उसमें, उसी पाठ के अंत में चार्ट है क्या, नहीं वो तीन लोक का नक्शा के उपरांत पीछे, तीन लोक के नक्शे के पीछे एक चार्ट है, परिग्रह वाला चार्ट। हाँ वही लिखा है, हाँ इसमें देखो परिग्रह के कितने भेद किए गए, मिल गया कि नहीं, नहीं मिला, आपस में दिखा दो जल्दी। तीन लोक का नक्शा जहाँ आया है उसके पीछे में, उसके पीछे चार्ट देखो, इसकी जानकारी लेना। परिग्रह के कितने भेद, 24 भेद हैं। मुख्य रूप से इतने कितने भाग किए हैं, दो। कौन कौन से, अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह आत्मा में उत्पन्न परिग्रह कहलाते हैं, बहिरंग परिग्रह जो आप लोगों के घर की वस्तुएं होती हैं वो बहिरंग परिग्रह। समझ में आया, बहिरंग परिग्रह यानी बाह्य वस्तु और अंतरंग परिग्रह यानी अंतरंग आत्मा में जो कषाय मोह राग आदि भाव होते हैं, ये अंतरंग परिग्रह। वस्तु के प्रति जो राग भाव होता है उसको अंतरंग परिग्रह कहते हैं। उसके दो भेद हैं, कौन कौन से भेद किया, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के भी दो भेद हैं, कौन कौन से, सर्वघाती और देशघाती। चारित्र मोहनी के भी दो भेद हैं, कषाय और अकषाय। इधर दर्शन मोहनी के सर्वघाती में फिर दो भेद किए गए हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। देशघाती के कोई भेद नहीं, एक ही भेद है, कौन सा, सम्यक प्रकृति। अब इधर चारित्र मोहनी के कषाय और अकषाय, ये जो दो भेद हैं, इन दो भेदों में से फिर विभाजन किया है। कषाय के कितने भेद, चार, क्रोध मान माया लोभ, ये सामान्य रूप से चार भेद हो गए, परंतु इसमें और चार भेद हो जाएंगे, क्रोध मान माया लोभ के और चार भेद हो जाएंगे। कैसे, सर्वघाती देशघाती रूप में क्रोध मान माया लोभ चार चार प्रकार के और हैं, नीचे दिया है अनंतानुबंधी चार, चार यानी यहाँ पर क्रोध मान माया लोभ चार, उसके नीचे अप्रत्याख्यानावरणी चार, क्रोध मान माया लोभ चार, प्रत्याख्यानावरणी चार, क्रोध मान माया लोभ चार, संज्वरण चार, क्रोध मान माया लोभ ये चार। ये चार तो ये कषाय कहलाती है, ये चार कषाय कहलाती हैं, और ये चार कषाय सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं, सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। चार्ट मन में बैठ जाना चाहिए। एक बार नक्शा मन में बैठ गया तो विषय आगे का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सर्वघाती किसको कहते हैं हम बता रहे हैं, देखो पहले शुरू से बताएंगे। परिग्रह के दो भेद किए गए, कितने भेद? दो भेद किए गए, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह हम जरा गौण करते हैं, बहिरंग परिग्रह तरफ आ जाइए। उसके नीचे क्या लिखा है? एक से पांच गुणस्थान तक होता है। बहिरंग परिग्रह किस गुणस्थान तक रहता है? एक से पांच गुणस्थान तक। समझ में आ रहा है? पांचवी गुणस्थान तक के जीव सभी परिग्रही होते हैं और पांच के बाद बहिरंग परिग्रह होता नहीं है। तो पांच के बाद कौन होते हैं? मुनि होते हैं। पांचवी वाले प्रतिमाधारी, ऐसा कहा कहना चाहिए, कौन होते हैं? प्रतिमाधारी। और चौथे में कौन होते हैं? प्रतिमा रहित, कहो कौन होते हैं? प्रतिमा रहित श्रावक। सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि? चौथे में हैं तो सम्यक दृष्टि। उसके नीचे तीसरे, दूसरे और पहले गुणस्थान में कैसे श्रावक होते हैं? मिथ्या दृष्टि सम्यक तो रहित श्रावक होते हैं। देखो पहले से तीसरे तक सम्यक तो रहित श्रावक होते हैं, यदि चौथे में हो तो प्रतिमा रहित श्रावक होते हैं। प्रतिमा रहित किंतु सम्यक दर्शन से सहित श्रावक होते हैं। पांचवे में होते हैं तो प्रतिमा सहित सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं और छठे में चले गए तो मुनि बन जाते हैं। तेरहवे में चले गए तो केवली भगवान बन जाते हैं, अरहंत भगवान बन जाते हैं। चौदहवे में चले गए तो सिद्ध, चौदह के बाद सिद्ध बनते हैं। तो चौदहवे में कौन है? अरहंत ही तो है। तेरहवा गुणस्थान और चौदहवा गुणस्थान अरहंतों का गुणस्थान है। और चौदहवें से भी पार हो गए तो सिद्ध भगवान कहलाते हैं। ये समझ में आया है ना? एक बार पहले भी कहा था। अब ये देखना है बहिरंग परिग्रह जीव के पास कितने गुणस्थान तक रह सकता है? एक से पांच तक। ध्यान रहेगा बहिरंग परिग्रह कहां तक रहेगा? एक से पांच तक। आप लोग किस गुणस्थान में हैं? सम्यक दर्शन का नियम लिया हुआ जीव किस गुणस्थान में रहेगा? चौथे में। सम्यक दर्शन का नियम कितने लोगों ने लिया है इसमें? अक्षय सागर जी ने नियम दिया था, बताते हैं कि यहाँ 50% लोग ने सम्यक दर्शन धारण किया, ऐसा सुना है। कितने लोगों ने लिया है? नियम नहीं लिया, कितने ही लोगों ने लिया है? 50 कहाँ है आपके गांव में? 50 तो है ही नहीं। आप लोगों ने तो सम्यक दर्शन का नियम लिया ही नहीं है। फिर 8-10 लोगों ने लिया होगा, 50% बोल रहे हैं। वही दिन क्या दिन थे? लिया कितने लोगों ने सम्यक दर्शन का नियम? इतने लोगों ने लिया है, कहीं अड़चन आ रहा है सम्यक दर्शन को धारण करने में भी? एक छोटा सा नियम, सबसे छोटा नियम तो किसका कहलाता है? सम्यक दर्शन का। त्याग तपस्या ही बड़ी होती है, उससे कठिन होता है वो। सम्यक दर्शन कोई कठिन होता ही नहीं। अंधविश्वास को तो छोड़ना है इसमें, और क्या है? नहीं, अंधविश्वास को तो छोड़ना है, फिर क्यों नहीं लिया? कहां क्या समस्या आ रही है लोगों को? डरते हैं क्या? डर है तो फिर अंधविश्वास अभी भी बैठा है। क्या समस्या आ रही है? बोलते नहीं, देखो मौन ही हो जाते हैं। समस्या क्या हो रही है? कुछ नहीं, फिर व्यर्थ रूप से मिथ्यात्व में निकाल रहे हैं समय को, जिंदगी को। प्रमाद क्यों करते हैं? वोटी नहीं भरो, भट्टी भरो। भट्टी भरना पड़ता है, वोटी कहां भर भरोगे? किसी दूसरे की भट्टी भर रहे हो वोटी मिथ्यात्व करके। प्रमाद क्यों करते हैं? देखो कितनी गंभीर। पचास लोगों को हमको तो बताओ तो सही, पचास कौन कौन है वो लिया है? पचास लोग किस किस ने लिया है? पचास पचास लोगों का रिकॉर्ड बताते हैं अक्षय सागर महाराज। वडगांव में पचास लोगों ने सम्यक दर्शन लिया है, 50% बताया। सौ घर में से 50 घरों के लोगों ने सम्यक दर्शन धारण किया, धर्मात्मा बन गए। वाह, धर्मात्मा कहां बने हैं यहां? 3-4 लोगों ने भी नहीं लिया। कितने लोगों ने दिया लिया था? पचास तो निकल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, गलत है, 50 तो लिया ही नहीं। इतने ही गांव में लोग हैं धर्मात्मा, उस समय में भी इतने ही लोग आते होंगे और भविष्य में भी इतने लोग ही आते हैं मंदिर। बाहर के कोई नहीं थे, देखे बिना नहीं कहो, देखे बिना नहीं कहना चाहिए। यहाँ के लोगों ने ऐसा कहा, उन्होंने यहाँ के लोगों ने 50 लोगों ने सम्यक दर्शन धारण किया, वो लिस्ट बना रहे हैं। वो लिस्ट तो लाओ, इधर देखेंगे कितना कौन कौन ने लिया है। अक्षय सार जी से लिस्ट मंगवाएंगे हम, उनके पास सभी नाम हैं, देख लेते हैं किस किस ने लिया है। यही निकलते हैं कि दूसरे निकलते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? उनके पास तो लिया और अभी तो नहीं लिया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है ना? तो 50 कैसे हो गए? हमको समझ में नहीं आता 50 लोगों ने के। Yeah। किस किस तरह से छोड़ा है उन्होंने, हम क्या पीछे हैं, आप लोगों ने लिया है तो क्या क्या लिया है ये पूछ रहे हैं। किस किस क्या क्या छोड़ा है उसमें, मिथ्या तो छोड़ा है तो क्या क्या छुड़ाया है आप लोगों से, आपने उन्हें क्या क्या छोड़ा है। वही तो पूछ रहे हैं हम, क्या क्या छोड़ा है उसके अंतर्गत, मिथ्यात्व के अंतर्गत क्या क्या आया, क्या क्या प्रतिज्ञा ली। जिन्होंने लिया है वो हाथ उठाएं। हाँ, तो क्या क्या बताया उन्होंने, क्या क्या छोड़ा है आप लोगों से। तो मंदिर का क्या क्या छोड़ा है अपने, यान चर्चा नड़ दी थी मत यान रही हो कुछ। कंदमूल देव को खुत रहो, रात बिख रही हो, ये तुम बिख रही हो। तो उसमें क्या क्या छोड़ा है, उनके प्रति जो होने वाली क्रियाओं में क्या क्या छोड़ा है उन्होंने, क्या वो टी गिटी का स्पष्ट कहो। हाँ, उसको छुड़ाया है कि नहीं छुड़ाया। अच्छा, उसको भी बताया समझाया है। तो शिविर में कितने लोग थे, उनके शिविर में कितने लोग आते थे, हाथ उठाओ। उनके शिविर में कितने लोग थे, आप लोग नहीं आते थे, 100% तो हैं। तो इतने लोग नहीं छोड़े थे, उस समय भी नहीं छोड़ पाए थे।
आप इतना होने के बाद भी आगे पीछे देखते हैं, 10-12 का दिन का क्या होता है, 10-12 दिन कैसे
लगता है। नया लिस्ट बनाओ, अब जो नहीं छोड़े हैं विचार करो, तैयार हो जाओ, अब प्रमाद नहीं करना। छोटा सा नियम है और व्यर्थ रूप से तुम लोग रत्न को खोकर कांच के पीछे जीवन बर्बाद कर रहे हो। थोड़ा सा साहस कर लोगे तो आत्मा का कल्याण होना संभव है, गुणस्थान चौथा हो जाएगा। पहले गुणस्थान में अकल्याण ही अकल्याण है, गुणस्थान चौथा हो जाएगा। चौथा हुए बिना तो पांचवी में जाना असंभव ही है। सम्यक दर्शन धारण किए बिना तुम्हारा सब व्यर्थ है। मंदिर आना, प्रवचन सुनना, उपास करना, नौपी करना, सब व्यर्थ है। उसको भी नहीं करो, अनर्थ दंड है। सम्यक दर्शन के बिना कोई सफल नहीं होता। नियम जैनागम में तो एक कहा है, पश्चाताप नहीं होता आप लोगों को कि हम इतना सब कुछ धर्म करते हुए भी व्यर्थ जा रहा है, विदाउट सम्यक दर्शन के कर रहे हैं, सम्यक दर्शन धारण किए बिना कर रहे हैं, ऐसा पश्चाताप नहीं होता। वो एक ही नहीं कर पा रहे, वो एक ही नहीं कर पा रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा महसूस, गलती महसूस नहीं होती, होती है क्या बेधड़क। सम्यक दर्शन के बिना धर्म करना तो खोबरे के बिना नारियल को खरीदना है। ऊपर की पर्टी तो है लेकिन अंदर खोबरा नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं उसमें, ऐसा जीवन है। सम्यक तो रहित जीवन धर्म के कार्य पर्टी के समान है। चिंतन करो, प्रमाद मत करो, जल्दी जल्दी सोचो जीवन को, बचा जीवन धर्ममय निकल जाए तो सदगति, कर्म की निर्जरा सदगति। दूसरे के पीछे हम मिथ्या तो क्यों करें, दूसरे के वजह से हम अपना अकल्याण क्यों करें। हमारा जीवन इतना स्वतंत्र, हमारा आत्मा इतना स्वतंत्र, किससे क्यों डरे हम, ऐसा विचार करो तो ऑटोमेटिक साहस आएगा। डर रहे है क्या? उसकी गुड़ी में कुछ नहीं डालेंगे तो हमको खा जाएंगे वो, ऐसा है क्या? तो इन सब को खा ले देखेंगे, 50 लोगों ने जो छोड़ा है उनका अनिष्ट कर दे देखेंगे। कोई है देवता उनको निगलने वाला? हे मेरे उड़ी भरना कर दिया है, छोड़ा है तुमको तो निगल जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ है क्या? यही तो अंधश्रद्धा है। अगर अपने मन में ये लगता है कि वो हो जाएगा ये हो जाएगा तो वो अंधश्रद्धा है, व्यर्थ भय है वो, व्यर्थ। अपने को डरना नहीं, 50 लोगों ने ग्रहण कर लिया वो क्यों नहीं डर रहे फिर, उनका क्यों अनिष्ट नहीं हो रहा है, ऐसा विचार करो। यदि डर लगता है तो ऐसा विचार करना चाहिए अपोजिट, और नहीं लगता है तो प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, तत्काल उस क्रिया को छोड़ दिया। हम कहते हैं उड़ी भरना हो तो एक शीलवती नारी का उड़ी भरो, तुम पुण्य लगेगा। शीलवती नारी का, देवों को तो वस्तु चलते ही नहीं, उनका अमृत आहार है, उनका क्यों भर रहे हो व्यर्थ रूप से? देवों को ये वस्तु दिए ही नहीं जाते, तुम्हारी साड़ी उनको नहीं चलती, तुम्हारा केला नहीं चलता, श्रीफल नहीं चलता, सुपारी नहीं चलती, खाते हैं क्या देव लोग? पर ये कैसी अंधश्रद्धा, उनको दे रहे हैं। वो साक्षात भी कोई देवता आ जाए, वही देवता यदि जीवित आ जाए, जीवित भी आ जाए वो जिसको आप भर रहे हैं, वो तो स्टैच्यू है, जीवित भी आ जाए तो इन वस्तुओं को ग्रहण करके नहीं जाएगा वो, वो कहेगा हमको ये नहीं चलते। तो तुमको क्या, मैं क्या दे दूं? तो तुमको, हमको कुछ देना नहीं पड़ता आपको, हमसे केवल तुम जय जिनेन्द्र बोलो, यही कहेगा। देव हो, देवी हो, कोई भी हो, वो यही कहेगा, हमको ये चलते नहीं। तो हम आपके लिए क्या दें? कुछ भी नहीं देना, यही देना, कुछ भी नहीं देना, यही हमको वचन देना, ऐसा देव कहेगा। हम खाते नहीं उनको, ले जाकर के क्या करें, हमारे स्वर्ग में बहुत पड़ा हुआ है, उसको ही नहीं खा सकते हम, यहाँ अमृत रहता है, यहाँ झरता है, उसका सेवन हम करते हैं। ये तुम्हारे वस्त्र हमको नहीं चलते क्योंकि इनको धोना पड़ता है, हमारे दिव्य वस्त्र होते हैं, हमारे वस्त्र तुमको दे दें तो तुमको चल सकता है, वो मलिन ही नहीं होंगे। सीता को वनवास के टाइम में देवों ने वस्त्र दे दिया, 14 साल तक भी पहने तो वो मलिन नहीं हुई वो। देवों के वस्त्र तुम्हें चल सकते हैं लेकिन तुम्हारे वस्त्र देवों को नहीं चलते क्योंकि ये मलिन होते हैं, इनको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। देवों के वस्त्र दिव्य होते हैं कि नहीं? दिव्य। कहीं जैन शास्त्रों में मानव धर्म पढ़ रहे हैं उसमें वोटी भरने का विषय आया है, तो वोटी भरना कहां से शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया? नहीं, आपका ग्रंथ रत्नकरंडक श्राव का चार ग्रंथ सच्चा शास्त्र है कि नहीं? वो सुनो, आपका ग्रंथ रत्नकरण श्राव का चार ग्रंथ सच्चा शास्त्र है क्या नहीं? वो क्या झूठा मानते हो? और उस पर विश्वास है क्या नहीं? उस पर विश्वास है। तो उस पर विश्वास है तो उसमें जितना आया है उतना ही करना चाहिए कि उसका उल्लंघन करना चाहिए? तो उसमें जितना है उतना ही करना है। तो ये गोटी गीटी भरने का है क्या? उसमें नहीं है। तो क्यों करते? शास्त्र के विरुद्ध काम श्रावक क्यों करता है? शास्त्र पर विश्वास नहीं क्या? शास्त्र से ज्यादा तुम्हारे पहले पासून के ऊपर विश्वास है क्या? शास्त्र अधिक है क्या परंपरा अधिक? वो परंपरा किस काम का जो शास्त्र के अनुरूप नहीं है? वो भार है जीवन का। कौन ढोने वाला है इन सबको? इन परंपराओं को कौन खींचने वाला, कौन ढोएगा? व्यर्थ की परंपराएं। अपने को सच्चे शास्त्र की परंपरा को स्वीकार करना है। परंपरा में सच्चाई भी होना चाहिए। चिंतन करो हम क्या कर रहे हैं, कितनी गलती कर रहे हैं। हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हमें विश्वास नहीं और दुनियादारी का काम निभाते बैठे हैं, दुनियादारी की परंपरा को निभाते बैठ गए। इधर जो कुछ भी धर्म किया जा रहा है वो भी सार्थक नहीं हो पा रहा है उसी कारण से। शास्त्र सुन रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, सब बेकार जा रहा है दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके। रत्नकरण सावकाचार ग्रंथ में तो एक भी श्लोक ऐसा है क्या, देख लो, मिथ्यात्व का जो पहले पासून का समर्थन करने वाला एक भी पद्य है क्या? देखो, है क्या? क्यों नहीं है? सच्चे शास्त्र सच्चा हो और उसमें व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की परंपरा की बातें लिखे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्रावकाचार का आपका चरणानुयोग का ग्रंथ है वो, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग कहते हैं कि नहीं कहते? तो चरणानुयोग का आपका ग्रंथ कौन सा? श्रावकाचार। उस पर विश्वास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हम लोगों का चरणानुयोग का ग्रंथ कौन सा? मूलाचार। वो अलग से है, इतना बड़ा है ग्रंथ, हमको उस पर विश्वास है। उसमें जितना आया है उतना ही करते हैं हम। हमारे यहाँ पहला पासुन वाली बातें हमारे यहाँ भी नहीं है, मुनि धर्म में भी। सबसे ज्यादा पहला पासुन वाली क्रियाएं आपके यहाँ ही हैं, मुनि महाराजों के यहाँ बिल्कुल ऐसी नहीं थी। एक मुनि महाराज का ग्रुप कोई ऐसा हो जो मूलाचार के विरुद्ध क्रिया करता हो और पहला पासून कहते हुए बैठे हो, ऐसा है ही नहीं। एक ही शास्त्र पर विश्वास सबका। हाँ, ये बात अलग है, जिस मुनि को ज्ञान नहीं है वो कुछ भी करते रहे वो बात अलग है, परंतु पहला पासून कहने वाले मुनियों की कुछ ऐसी क्रियाएं अपने यहाँ किसी के पास नहीं है। श्रावक से पूछते हैं तो धड़म से बोल देता है वो। पहला पासुन, मुनि से पूछो, ऐसे मुनियों का कोई वर्ग नहीं है कि ये सब क्रियाएं हमारे पहला पासुन की हैं, ऐसे नहीं मिलता है। मुनियों की सब क्रियाएं एक सी हैं। अब अज्ञानी मुनि कुछ शीतलाचारी हो तो बात अलग है, उसकी कोई पहला पासुन की परंपरा उनके पास भी नहीं है, वो गलती से कर रहा है। साधुओं के लिए मूलाचार और श्रावकों के लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, आपका शास्त्र है वो, और हमको मूलाचार पर विश्वास रहना चाहिए, वो हमारा शास्त्र, हम रोज मूलाचार को नमस्कार करते, हमारा संविधान ग्रंथ, हमारा रक्षक, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि उसमें लिखी हुई है, उस दिव्य ध्वनि पर हमें विश्वास है, मूलाचार में है वो, उससे हट करके हम नहीं चलते। और कुछ मुनि महाराज तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना। क्या तुम्हारे पहले पासुन की बात को पोषण कर रहे हैं? वो रत्नकर्ण श्रावकाचार में नहीं है, फिर भी वो कहते हैं पहला पासुन इसको तुमको चल जाएगा तो धर्म हो जाएगा क्या? वो परंपरा धर्म नहीं हो सकता। किस पर विश्वास करोगे? बोलो श्रावक श्राविकाओं, तुम्हारा विश्वास का शास्त्र कौन सा है? रत्नकर्ण श्रावकाचार। क्या ठोस विश्वास करोगे? सम्यक दर्शन धारण करोगे? उसमें जो लिखा है वही धारण करोगे? करो, साहस करो, नया लिस्ट बनाओ, नए लोगों को जोड़ो। महाराज हम रत्नकर्ण श्रावकाचार में जितना आया है उतना ही करेंगे, और हम किसी भी अन्य परंपराओं को महत्व नहीं देंगे। मुनि शास्त्र नहीं होता। मुनि दो तरह का उपदेश दे रहा है आज। हम रत्नकर्ण श्रावकाचार के अनुसार उपदेश दे रहे हैं, और एक पहला पासुन वाले का उपदेश दे रहे हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं, शास्त्र सामने, दर्पण सामने है। मैं पूछूंगा, आप भ्रमित हो रहे हो, ये महाराज जी कह रहे हैं, वो एक महाराज कह रहे हैं, भ्रमित होते हैं कि नहीं? स्वाभाविक, सामान्य जीव भ्रमित होता है। गुरु के माध्यम से गुरु को पकड़ करके ही चलना चाहता है। गुरु को मत पकड़ो, न हमको पकड़ो न उनको पकड़ो, शास्त्र को पकड़ो। दो दो नहीं करना चाहिए, माँ बाप को एक ही करना चाहिए। दो दो माँ बाप होते हैं कि दुनिया में कहीं किसी के? कहीं किसी के माँ बाप दो दो होते हैं? फिर धर्म दो दो कैसे हो गए? तुम्हारे परंपरा दो दो कैसे हो गई? हाँ, धर्म भी एक ही है ना, दो कैसे बना दिया तुमने? दो बना रहे हो तो फिर आधार दो हमको। अरहंत दो होते हैं क्या? दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं, उनका लक्षण एक ही है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों जहां हैं वो अरहंत। घाती कर्म जहां नहीं है वो अरहंत। 18 दोष जिनके पास नहीं है वो अरहंत। परिग्रह जिसके पास नहीं है वो अरहंत। अरहंत का लक्षण एक ही है। ऐसे लक्षण के अनुसार हजार अरहंत बन सकते हैं, पर वो सब एक ही रहेंगे कि नहीं? निर्दोषता के दृष्टिकोण से एक ही रहेंगे। श्रावक दो क्यों? मुनि दो क्यों? क्या धर्म दो हैं इसलिए दो हैं? धर्म दो हो तो मुनि भी दो, धर्म दो हो तो श्रावक भी दो, धर्म दो हो तो अरहंत भी दो, मोक्ष दो हो तो मोक्ष में अलग अलग सिद्ध परमिष्टि भी दो। धर्म एक है क्या? बहुत है। सत्य है सत एक है क्या बहुत है, सत्य तो एक ही होता है, कोल्हापुर एक है क्या दो है, पेट वड़गांव एक है क्या दो है, और पेट एक है क्या दो है, सब एक ही तो है, सब एक एक ही होते हैं। हम दो दो बनाते हैं तो एक काल्पनिक होता है और एक सच्चा होता है। जो काल्पनिक होता है उसी का त्याग करना है। ये ओटी गीटी तो काल्पनिक है, रत्नगढ़ श्रावकाचार में नहीं है, ये सच्चे शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं, भगवान ने नहीं कहा कि इसको भरो। जरा विचार करो, चौथे काल में क्या श्रावक श्राविकाएं नहीं थी, ओटी भरते थे, भरते थे क्या श्राविकाएं, बताएं चौथे काल की श्राविकाएं क्या भगवान साक्षात देव समूह शरण में होते थे, ओटी भरने के लिए वहां जाते थे क्या? तो साक्षात देवों को नहीं भरते थे तो ये स्टेच्यू को भरने की क्या जरूरत है? और रत्नगर श्रावकाचार्य में कहीं श्लोक मिलता है क्या, ये वोटी साक्षात समूह शरण में तो भरी नहीं जाती थी और स्टेच्यू बना करके भरना चाहिए? आपके ग्रंथ में लिखा है कि आपका संविधान ग्रंथ रत्नगढ़ श्रावकाचार्य लिखा है क्या? नहीं है तो विचार नहीं हो गया क्या? नहीं। अब एक महाराज कह रहे हैं वोटी भरो तुम, और एक महाराज कह रहे हैं ये गलत है संविधान, सावधान संविधान, ऐसा कह रहे हैं। और रत्नगढ़ श्रावकाचार्य भी कुछ नहीं बोल रहा है, मौन है ओटी के बारे में। तो कौन महाराज सच है इसमें? हा? जिनके सामने रत्नगढ़ श्रावकाचार्य है वो महाराज सही हैं, या इसमें कुछ भी नहीं है और वो बोलते जा रहे हैं वो सही हैं? तो रत्नकण श्रावकाचार्य का अध्ययन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसको पढ़ोगे रत्नकण श्रावकाचार्य को, महाराज कौन सच बोल रहे हैं अब तो पता चलेगा ही। भ्रमित क्यों होते, जमलिंग क्यों? शास्त्र ही सबके लिए है। मुनि महाराज क्या अपनी तरफ से तुमको उपदेश दे सकते? शास्त्र में जो श्लोक आए हैं वही सुनाना पड़ेगा, और जितना आया है उतना ही सुनाना पड़ेगा। इधर उधर का पहले पासुन की बात को मिक्सिंग कर दिया तो संविधान प्रदूषित हो जाएगा, उसमें मिक्सिंग नहीं चलता। संविधान को प्रदूषित रख करके नहीं चलना, संविधान को बिल्कुल निर्दोष रखना है। उन श्लोकों में मिक्सिंग आज तक नहीं हुआ है और किसी ने किया भी नहीं, कर भी नहीं सकते। यदि किया भी तो तुरंत पकड़ में आएगा, क्यों? ऊपर एक है और नीचे एक लिख रहे हैं, उसी का अनुवाद करेंगे, मिक्स करेंगे ना। तो टीकाकार अगर कुछ मिक्स करता है तो पकड़ में आता है, चोरी पकड़ में आती है। तो घुसपैठी नहीं चलती सच्चे शास्त्रों में। छठा पाठ, 25 दोषों से बचना चाहिए, ये सम्यक दर्शन है। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य ने तो लिखा है 25 दोष शुरू है, मध्यान्ह में पढ़ा रहे हैं ना, तो बस उस 25 दोषों में 25 दोष छोड़ दिया तो हो गया। तीन मूर्ता, 6 अनायतन और 8 मद, 8 अंग, यही है मुख्य। उसमें 8 अंग में से निश्चयंकित अंग और निकांक्षित अंग ही मुख्य हैं। वो दो भी अगर आ गए बाकी तो आप कर ही नहीं सकते। दो के धारण करने पर बाकी का त्याग ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि निशंकित में ये है कि आपका संविधान ग्रंथ रत्नकर्णक सावकाचार ग्रंथ है। निशंकित यानी क्या? विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? आपके संविधान ग्रंथ पर विश्वास करना, प्रॉमिस करना, मैं मन वचन का इससे मिथ्यात को त्यागता हूँ और इस ग्रंथ में जितना आया है उतना ही करता हूँ, ये प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस करना। जैसे राष्ट्रपति पद पर संकल्प लेता है, मैं जब तक इस 5 साल तक इस पद पर रहूंगा तब तक देश को अच्छी तरह से हैंडल करूंगा, करता है कि नहीं? तो धर्म में ये सबको करना पड़ेगा तो ही कल्याण होता है आत्मा का, नहीं तो धर्म भी भटकेगा, आपके साथी भी भटकेंगे, आप भी भटकेंगे, आपका भी अकल्याण, पीछे वाले जो आ रहे हैं उनका भी अकल्याण, अकल्याण होता जाएगा। जो पहले पास सुन के काम करते रहते हैं ना, उनके पास कोई प्रमाण नहीं, वो चर्चा कर ही नहीं सकते रत्नगढ़ सावकाचार के साथ, और इसका उपदेष्टा जो होते हैं जैसा है वैसा ही कहते हैं, उनके साथ वो चर्चा कर ही नहीं सकते। प्योरिटी है उसके सामने बोल नहीं सकते, चर्चा करने के लिए भी बैठे भी बैठ भी जाएंगे तो वो इतना ही कहेंगे, ये हमारी शांति सागर जी की परंपरा या तो गुरु के माथे पर, निर्दोष गुरु जो हैं उनके माथे से बांधेंगे उस परंपरा को, या तो ये कहेंगे कि पहले पासुन है इसलिए हम करते हैं। तो ऐसा चलता है क्या धर्म में? आप मिक्सिंग करके चलो, आचरण को मिक्सिंग बनाओ, ऐसा नहीं चल सकता। कल्याण तो सम्यक दर्शन धारण करने के बाद ही जब होना है तो हमारे लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए, उस पर बार बार चिंतन करके साहस जुटाओ और कल्याण के मार्ग पर एक बार लग जाओगे तो कुछ आपको होता नहीं, सुख ही सुख है उसमें, कहीं तकलीफ कहीं विघ्न कुछ भी नहीं आ सकते। पचास को कुछ तकलीफ है क्या? उनसे जरा चर्चा करो, आपने तो साल भर से छोड़ा है, 3-4 महीने हो गए, अक्षय सागर जी कब से आए, 4 महीने हो गए, 4 महीने से कुछ आपको हुआ क्या? पूछो उनसे। तो अगर वो कहें कि हमको तो बहुत आनंद आ रहा है तो ले लेना। और शास्त्र आपको जो सच्चा मार्ग है उसी को बताता है, जो तकलीफ का मार्ग है उसको क्यों बताएगा, जो व्यर्थ का मार्ग है क्यों बताएगा? तकलीफ का मार्ग तो यही है मिथ्यात्व, जीवन के जो संकट आ रहे हैं इसी मिथ्यात्व के कारण से आ रहे हैं, हमारी दरिद्रता मिथ्यात्व कारण, धनहीनता मिथ्यात्व कारण, अशुभ कर्म है क्या? नहीं, मिथ्यात्व कर्म, पाप कर्म है क्या? नहीं, वो मिथ्यात्व के बताए ना, दर्शन मोनि चारित्र मोनि, मोनि कर्म के दो भेद हैं, उसमें मिथ्यात्व पहले नंबर का है, वो कर्म अशुभ कर्म है क्या? शुभ कर्म है, वो अशुभ कर्म है। ये मिथ्यात्व करेंगे तो पाप कर्म और बढ़ेगा, पाप कर्म बढ़ने से ही संकट आएगा, संकट तो मिथ्यात्व से आता है, सम्यक तो धारण करने वाला सम्यक प्रकृति ये पुण्य कर्म है, ये देशघाती यहां लिखा है चार्ट में, देशघाती है वो, देशघाती कर्म के उदय में सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक दृष्टि को ही देशघाती कर्म का उदय रहता है। और ये सम्यक्त्व यदि जीवन में आया, टाइम हो गया, सम्यक्त्व जीवन में आया तो आपके लिए कोई संकट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम वचन देते हैं आपको, शास्त्र वचन दे रहा है तो मैं क्यों नहीं दूंगा? और कौन कौन से विकल्प हैं जरा चर्चा तो करो मेरे से, उसके लिए रास्ता निकाल के दे दूं, जो प्रॉब्लम है उनको हमको बताओ, हम रास्ता खोल के देते हैं आपको, ये ऐसा करना है, इतना ऐसा है, ऐसा है रास्ता, उसमें से निकाल के हम दे देंगे। जिस जिस को भी जो भी प्रॉब्लम है उसकी चर्चा करो आप सम्यक दर्शन धारण करने के लिए। हाँ वो तो लोकमूर्ता है ना, लोकमूर्ता में आएगा वो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने नारियल श्रीफल अर्पित किया जाता है, ये लोकमूर्ता नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए नारियल अर्पित किया जाता है मोक्ष फल प्राप्ति के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए। वहां पर मिथ्यात्व का सवाल नहीं आता, सवाल आता है रागियों को, रागी देवताओं को, जो कि वो कवलाहारी नहीं है, अमृताहारी हैं। उनको हम ये सब वस्तु दे रहे हैं अमावस्या के दिन जा जा करके, यहां से गाड़ी का खर्चा व्यर्थ, नारियल का 10 रुपया पानी में गया, रुपया गया पानी में। ये अज्ञान की क्रिया कहलाती है। रागी को, मनुष्य को दे तो फिर भी पुण्य आ जाएगा, वो लोकमूर्ता नहीं कहलाएगा। हर अमावस्या को एक आदमी को नारियल फोड़ो, उसको आधा दो, आधी प्रसाद खाओ, ये लोकमूर्ता नहीं। जो खा सकता है उनको देना लोकमूर्ता नहीं, जो खाता नहीं और उसको खिलाने की चेष्टा, ये मिथ्यात्व है। एक पत्थर है, पत्थर नारियल खाता कहना गलत है क्या? सच है, गलत है, लेकिन फिर भी खिलाने की चेष्टा करना हर अमावस्या को आकर के, नारियल को, नारियल फोड़ना और पत्थर खाता है, नारियल फोड़ना पत्थर खाता है, ये एक भी नहीं खाया अभी तक, तो ऐसा ये व्यर्थ काम है क्या? नहीं, व्यर्थ काम को ही मिथ्या तो कहा है। लोकमूर्ता का मतलब क्या? जो व्यर्थ होता है उसका नाम लोकमूर्ता। व्यर्थ ही तो कर रहे हैं, मिथ्यात्व की सारी क्रियाएं व्यर्थ होती हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, उसी को व्यर्थता बोलते हैं। टाइम हो गया जिनवाने। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल